और आइए अरपा रेडियो पर अब सुनते हैं कार्यक्रम भेंट मुलाकात योगेश के साथ।
श्रोताओं जय जोहार, आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो 90.8 FM। मैं हूं योगेश और आपके साथ कार्यक्रम भेंट मुलाकात को लेकर हाजिर हूं। आप जानते ही हैं कि भेंट मुलाकात की इस सीरीज में हम अंग्रेजी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं SCERT रायपुर यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ की सहायक प्राध्यापक सुश्री आई संध्या रानी, जिनसे हम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं और वे सारे सवाल हमारे श्रोताओं में जो शिक्षक हैं उनके द्वारा आए हैं। वो शिक्षक अपनी अंग्रेजी पढ़ाने की प्रैक्टिसेस में बहुत सारी समस्याएं पाते हैं और उन समस्याओं का समाधान वे संध्या जी से चाहते हैं। ये प्रोग्राम हमने इसीलिए डिजाइन किया है कि हम अंग्रेजी विषय में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों को किसी एक्सपर्ट के माध्यम से दूर करें। संध्या जी, आपका पुनः एक बार स्वागत है और आपकी अनुमति से मैं इस कार्यक्रम का प्रश्न लेता हूँ। स्वीटी विश्वकर्मा एक सेंट पलोटी हायर सेकेंडरी स्कूल है बिलासपुर में, वहां से स्वीटी जी जुड़ रही हैं हमसे, अंग्रेजी की शिक्षिका है वो। उनके तीन छोटे छोटे सवाल हैं, वो आपके सामने रखता हूँ।
हेलो
हेलो जी नमस्कार, मैं योगेश बोल रहा हूँ अरपा कम्युनिटी रेडियो से, आपका स्वागत है। आप कृपया अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें।
जी आई एम स्वीटी विश्वकर्मा सर फ्रॉम सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इज ग्रामर कंपलसरी फॉर द इंग्लिश कन्वर्सेशन?
ओके।
Class management of English conversation. One more question is there. What is the best practice method of English speaking?
What is the best practice method of English speaking? Okay. Got it. तो मैं ये सारे सवाल सीधे सीधे मैडम की ओर प्रेषित कर देता हूँ।
जी फर्स्ट का तो आंसर है, इज ग्रामर नेसेसरी फॉर इंग्लिश कन्वर्सेशन? नॉट एट ऑल। नोइंग ग्रामर इज अ डिफरेंट थिंग एंड नोइंग लैंग्वेज इज अ डिफरेंट थिंग। मैनी ऑफ अस वी डोंट नो, हमें पता नहीं है कि हम जिस भाषा में बात करते हैं या जो हमारी मातृभाषा है उसकी ग्रामर है या नहीं है, और ग्रामर है तो वो क्या है। शायद हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसकी ग्रामर होगी क्या। आज हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि सभी लैंग्वेज की एक ग्रामर है, इसलिए हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ग्रामर नेसेसरी है क्या लैंग्वेज स्पीकिंग की। मुझे अपनी मदर टंग की ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मैं अपनी बात रख सकती हूँ अपनी मदर टंग में, और मेरी भाषा जो भी ऑडियंस है जिससे भी मैं बात करती वो समझ सकते हैं, जो कि लैंग्वेज का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अगर ये कंप्लीट होता है, ये फुलफिल होता है, तो मुझे ये लगता है कि ग्रामर नहीं आने से भी मेरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल है। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई से नो, नॉट एट ऑल, ग्रामर इज नॉट नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन। बट टू नो लैंग्वेज ग्रामर इज नेसेसरी इन द सेंस कि हम ये जाने की करेक्टनेस क्या है, उसके लिए मुझे ग्रामर की जरूरत है। अगर मैं भाषा को फॉर एक्सप्रेसिंग माई थॉट्स एंड आइडियाज की बात करती हूँ तो ठीक है, बट एक्सप्रेसिंग माई थॉट्स एंड आइडियाज इन करेक्ट लैंग्वेज अगर मैं कहती हूँ तो ग्रामर जरूरी है। दूसरा, अगर मैं किसी को पढ़ाना चाह रही हूँ, जो कि तब हमें ग्रामर की जरूरत होती है, वरना ग्रामर की बात कोई नहीं करता। हम डे टू डे लाइफ में कभी भी ग्रामर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रामर लैंग्वेज में इनबिल्ट है, क्योंकि लैंग्वेज एक स्किल सब्जेक्ट है, आप उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करिए। एक और दूसरी बहुत अच्छी चीज ये होती है लैंग्वेज के साथ, अगर मुझे एक लैंग्वेज की ग्रामर आती है तो मैं दूसरी लैंग्वेज में उस ग्रामर को फिट करके ये बता सकती हूँ कि ये वर्ड जो है नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो हेल्प तो करता है, एक मींस दूसरा लैंग्वेज लर्निंग में ये हेल्प करेगा, बट फॉर कन्वर्सेशन ये हेल्प नहीं करता। दूसरा, अगर आपने ये प्रश्न पूछा मुझे कि क्लासरूम मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, नॉर्मली क्लासरूम कन्वर्सेशन में एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको स्पीकिंग और दोनों सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है नियरली सेम है आपके, तो इंफॉर्मेशन गैप की अगर एक्टिविटीज आप लेते हैं तो ये एक्टिविटीज आपके लिए स्पीकिंग के लिए और या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी होंगी। जैसे इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज सर्च करेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाएगी। उसमें ये रहता है कि एक इंफॉर्मेशन होता है, उसमें हम एक एग्जांपल ये हो सकती है कि दो बच्चों के पास हमने दो फ्लैश कार्ड दिए या दो पीसेस ऑफ कार्ड दिए, एक के पास आधा इंफॉर्मेशन है, दूसरे के पास उसका और हाफ इंफॉर्मेशन है। ये दोनों आपस में चर्चा करके उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज इसलिए अच्छी होती है क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज को बनाने में ये नीड हो जाती है उस बच्चे को कि वो उस दूसरे बच्चे से बात करे और फिर वो कंप्लीट करे एक्सरसाइज को, और हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और वो बच्चों की नीड हो जाएगी उस एक्सरसाइज कंप्लीट करने में। तो ये इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज बेस्ट एक्टिविटीज कहलाती है जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं।
बिल्कुल, ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के, तो वो खुद अपनी वोकैबुलरी में से खोजेगा और एक्सप्रेस करने के लिए अपनी ग्रामर डिजाइन करेगा
जी,
जो उसके अनुभव में है, जो उसने सुनी है या पढ़ी है पहले। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी जी सवाल पूछने के लिए, और मैडम आपको भी बहुत धन्यवाद कि इतने कम शब्दों में आपने इतना बढ़िया सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया हमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैडम आपकी सुझाई एक्टिविटी का अमल करेंगी और बच्चों में स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। एक अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, नाम है अभिषेक शर्मा जी, आप व्याख्याता हैं जांजगीर जिले में।
हेलो
हेलो, हाँ नमस्कार।
नमस्कार सर, मैं अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ बिलासपुर से।
हाँ जी सर, बोलिए सर, स्वागत है आपका अर्पा रेडियो 90.8 एफएम पर। अपना प्रश्न रखें अभिषेक जी।
ये जो हमारा विषय अंग्रेजी अध्यापन शिक्षण के ऊपर,
जी जी,
वर्षों से इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाकर देख रहे हैं, बच्चे चार पांच चीजें रट लेते हैं, शिक्षक भी वही चाहता है कि पीसी का, एसी का, वंडर ऑफ साइंस, इस तरह के कुछ ऐसे रट ले
जी
और बच्चा पास कर जाए, लेकिन वो चार लाइन लिख सके अपने मन से, कुछ चीजें बोल सके, वो उस भाषा को जिसको वो पढ़ रहा है उसको वो यूज कर सके, तो ये उपयोगिता वाली बात खत्म हो जाती है, सिर्फ परीक्षा पास करने पर ही केंद्रित हो जाते हैं बच्चे
जी।
तो मेरा सवाल यही है कि क्या हम इस दिशा में कुछ कार्य कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो भाषा को बोलने और उसको यूज करने पर ज्यादा ध्यान दे बनिस्बत कि वो परीक्षा पास करने पे फोकस करे।
जी तो संध्या जी, ये सवाल आपकी ओर प्रेषित करता हूँ मैं, अभिषेक जी के प्रश्न का आप जवाब दीजिए।
नॉर्मली हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है इस पे डिपेंड करती है कि हम क्या स्ट्रेटेजी यूज करें, क्योंकि आज हम इंग्लिश टीचर्स की तरह काम कर रहे हैं, टेस्टिंग इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम टीचिंग इंग्लिश की बात करते हैं, एग्जाम्स की बात है तो ये टेस्टिंग की बात हम कर रहे हैं
जी।
एज टीचर्स हमारा ऑब्जेक्टिव टीचिंग है, टीचिंग का एक छोटा सा पार्ट है टेस्टिंग, जो हमें ये बताता है कि जो हमने सिखाया वो बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, इतना ही है। तो टेस्टिंग के पहले जो चीजें है वो सारी चीजें करने के बाद हम टेस्टिंग पे आएंगे तो बच्चा जरूर लैंग्वेज सीखेगा। दूसरी बात ये है कि साल भर हम इन बातों पे बात करते हैं कि मार्क्स कैसे स्कोर करें, और एंड ऑफ द डे बच्चे को हम ये कहते हैं कि तुम्हें भाषा नहीं आती। अगर बच्चों के शूज में हम अपने आप को रख के देखें तो हमने जो सिखाया उससे ज्यादा वो सीखा है, क्योंकि हम जो सिखाए हैं वो केवल टेक्स्ट बुक हमने पढ़ाया है, पूरे साल भर हमने टेक्स्ट बुक पढ़ाया, और एंड ऑफ द ईयर बच्चा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करता है तो हम कहते हैं एक ऐसे याद कर लो, अनसिन पैसेज कर लो, फलान ये कर लो, ये कर लो। तो इंग्लिश में एज टीचर्स हमें दो बातों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम इंग्लिश टीचिंग के लिए है और टेस्टिंग टीचिंग का एक छोटा सा हिस्सा है जो इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हमने जो सिखाया वो बच्चा सीखा या नहीं इसके लिए। दूसरा ये कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग है या टेस्टिंग है। अगर केवल टेस्टिंग है तो हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज टीचर्स हैं तो बच्चों को लैंग्वेज आना चाहिए, एज लैंग्वेज टीचर्स हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। हम एक्चुअली एज इंग्लिश टीचर्स हम ये मान के चलते हैं कि 33% इज मोर देन इनफ फॉर अ चाइल्ड, बस पास हो जाए मेरा बच्चा, हम उसके आगे की बात ही नहीं करते। क्यों ना हम ये कहें कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिलेगा इसके पहले जो रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, जो कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज की ग्रामर है, लैंग्वेज की वोकैबुलरी है, प्रैक्टिस है, वो सारी करने के बाद हम एज गुड लैंग्वेज यूजर्स होंगे, हमारे पास कमांड ऑफ द लैंग्वेज होगी, केवल 33% हमारा टारगेट नहीं है।
बहुत दुविधा भी हो जाती है कई बार शिक्षक के लिए कि एक वो जो प्रेशर है कि ये बोर्ड कक्षाओं में है, यहाँ तो पास होना ही ये सिद्ध करता है कि आपने ठीक से पढ़ाया, और ये पेरेंट्स का भी प्रेशर है, ये बच्चे की भी जरूरत है कि उसको अगली कक्षा में जाना ही है, और उस बीच भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य कि भाषा बोलना लिखना समझना उसका उपयोग करना आना चाहिए। शायद इस दुविधा में ही अभिषेक जी होंगे, और अभिषेक जी की तरह ही हम सभी शिक्षक हमेशा से रहते हैं इस दुविधा में। जब परीक्षाओं का टेस्टिंग का मसला आता है तो हमको ये दुविधा होती है।
लेकिन टीचिंग का हमारा गोल टेस्टिंग नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम टीचिंग करते भी हैं तो कौन पढ़ता है, एक बार हम पलट के ये देखें कि हु रीड्स, द टीचर रीड्स, हु गिव्स द आंसर, द टीचर गिव्स द आंसर, तो हु राइट्स ऑन द बोर्ड, द टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड, व्हाट डज द स्टूडेंट डू, स्टूडेंट लिसन्स टू द टीचर, और टीचर्स की टीचर की व्हाट डज ही लिसन टू द हिंदी ऑफ द टीचर, क्योंकि उसको पता है कि ये ट्रांसलेट करके बताएगा मुझे, तो वो लैंग्वेज इंग्लिश को नहीं समझ रहा, वो आपकी हिंदी को समझ रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो है, तो उसको पता है कि आप हिंदी में बोलोगे, इसलिए वो आपके इंग्लिश वो सुन भी नहीं रहा, तो आप वो सिचुएशन में ला के रखो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद करके इसका आंसर निकालना है, उसमें भले वो 4 दिन लगाए बट उसको उस सिचुएशन में रखो आप, हमारी पेशेंस की टेस्टिंग है ये, और उसको करने दीजिए, तभी उसके बदले में आप कब तक उसके क्वेश्चन के आंसर देंगे, यानी कब तक, 12th तक हम यही कर रहे हैं, उसके बदले में उसके आंसर्स दे रहे हैं, बच्चा क्या करता है, केवल कॉपी कर रहा। हम साल भर कहते हैं कि हमने रीडिंग कराया, रीडिंग क्या किया, किसने किया, टीचर ने किया, आंसर किसने दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसका अच्छा होना चाहिए, टीचर का अच्छा होना चाहिए, एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं बच्चे को रीडिंग नहीं आती, नहीं आएगी, क्यों, कैसे आएगी, मैंने अपने पेट भर खाना खाया और मैं कहती हूँ कि तू देख रहा था ना बेटा, तेरी पेटेरा तो पेट भर गया होगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरा वो बच्चा भी उस लर्निंग प्रोसेस में काम कर रहा है, वो खुद पढ़ रहा है और खुद ट्राइंग टू गेट द आंसर्स, ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द आंसर्स, ही इज लिसनिंग, ही इज रीडिंग द पैसेज, वो उसको 10 बार उस पैसेज में ले जाइए, कोई गलती नहीं है, बट वो अपने आप अगर एक भी आंसर करता है तो करने दीजिए। दूसरा एक और चीज मुझे ये बोलना था कि नॉर्मली हम जो क्वेश्चंस देते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस देते हैं, यानी बच्चे आंख बंद करके पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला सेंटेंस दूसरा क्वेश्चन का आंसर दूसरा, तीसरा का तीसरा सेंटेंस भी लिख देता है तो बच्चे को मार्क्स मिल जाती है, या फिर वो ढूंढ लेता है वो वर्ड्स और कॉपी कर देता है, मार्क्स मिल जाता है। तो वॉट इज द स्किल दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलप, इज इट रीडिंग स्किल और इज इट कॉपिंग स्किल, मुझे ये दोनों चीजें थी जो बाप बोल रहे, टेस्टिंग में हम क्या टेस्ट कर रहे हैं उसको, जब हमने वो रीडिंग स्किल ही डेवलप नहीं किया, लिसनिंग स्किल ही डेवलप नहीं किया, स्पीकिंग स्किल ही डेवलप नहीं किया, फिर टेस्टिंग की बात ही नहीं आती है, हमने तो कोई स्किल डेवलप नहीं किया, उसका जो स्किल हमने डेवलप किया वो कॉपिंग किया, और चेक भी किया कॉपिंग किया कि उसने सही मेरे मैंने जो बोर्ड पे उतारा वो सही लिखा कि नहीं, तो वो स्किल अगर डेवलप मैं कर रही हूँ तो मैं टेस्टिंग में यही कर रही हूँ, तो बच्चे की लैंग्वेज शायद ही, वो बच्चा लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हो सकता, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में वो आ ही नहीं पाएगा
जी। तो मैं इस बात से ये अपनी समझ बना पाया हूँ कि परीक्षा के टारगेट से ही यदि हम लैंग्वेज को डिलीवर कर रहे हैं क्लासरूम में, तो उस पूरी प्रोसेस में जो चारों स्किल्स की हम बात करते हैं, उन सभी स्किल्स में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मौका दे, तो हम सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए भी करेंगे सारी प्रोसेस, तो भी वो बहुत सारी बातें सीख जाएगा,
राइट। बट हमें उन बातों को ध्यान में रख के फिर टेस्टिंग में आए तब होगा, हम टेस्टिंग हवा में नहीं कर सकते, जो हमने पढ़ाया ही नहीं उसका क्या टेस्ट लें
जी, जी
आज तक हमने उसको रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दे के आंसर्स कराया नहीं, उसके बदले में हमने आंसर्स लिखा
जी,
ग्रामर के आंसर्स हमने दिए, सब में हमने दिया, फिर टेस्टिंग किसका
जी,
वो पेपर भी हमें सॉल्व करना चाहिए
जी। और यदि यदि टेस्ट डिजाइन करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो और आपको नहीं पता, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या पूछे, क्या क्या प्रश्न आएंगे, कौन से प्रश्न आएंगे, तो आपको बच्चे को तो सारी चीजों के लिए तैयार करना चाहिए।
और इसलिए आज की डेट पे ऐसा आप देखे होंगे कि जितने भी रिटन टेस्ट है, वॉक इन इंटरव्यूज है, बच्चे हमारे बच्चे जो है उसमें जाते ही नहीं है, फॉर्म्स ही नहीं भरते हैं, क्योंकि इंग्लिश में वो देखते हैं कि उनको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक में उनको प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो वॉक इन इंटरव्यूज में भी नहीं जाते ना टेस्ट में अपीयर होते हैं।
जी,
तो कहीं ना कहीं एज टीचर्स हमें ये मोटिवेशन भी देना चाहिए कि दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसमें हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।
जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बात से, और मैडम की बात आप सबने सुनी और आप यथासंभव उसे अमल करेंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे, हमारे रेडियो को भी इस बात का पूरा विश्वास है कि मैडम की बातों से आपको बहुत 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 सारी मदद मिलने वाली है। और एक जो बहुत अच्छी बात देखने में आई है कि बहुत सारे शिक्षकों ने सवाल पूछे, तो सवाल पूछते रहिए, क्योंकि शिक्षक का काम केवल बच्चों से सवाल करना नहीं है, शिक्षक का काम खुद के लिए भी सवाल करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारे कार्यक्रम में आकर अच्छा महसूस हुआ होगा, हम तो बहुत बहुत खुश हैं और बहुत संतुष्ट हैं कि हमने सही व्यक्ति का चुनाव किया है इन प्रश्नों के जवाब के लिए।
थैंक यू।
आप सबसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक ट्यून करते रहिए अरपा रेडियो 90.8 FM। थैंक यू।
भेंट मुलाकात योगेश के साथ। आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT की वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक सुश्री आई संध्या रानी के साथ योगेश ने की बातचीत। ये बातचीत फोन इन कार्यक्रम पर आधारित थी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अंग्रेजी का पठन पाठन कैसे हो, इस विषय पर प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं सुश्री आई संध्या रानी। इस श्रृंखला का अगला अंक सुनने के लिए सुनते रहिए अरपा रेडियो।
ये है अरपा रेडियो।